कांग्रेस की स्थापना का मिथक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। उस समय के 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उसकी नींव रखी थी। अखिल भारतीय स्तर पर यह भारतीय राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सवाल उठता है कि इन 72 लोगों ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की और इसके लिए यही समय क्यों चुना। इस सवाल के साथ एक मिथक अरसे से जुड़ा रहा है, अपने आप में काफ़ी दमदार है। यह मिथक सुरक्षा वाल्व का यह मिथक पिछली कई पीढ़ियों से छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को घुट्टी में पिलाया जा रहा है, लेकिन इतिहास के सच को अगर हम टटोलें तो पता चलेगा कि इस मिथक में उतना दम नहीं है जितना कि आमतौर पर इसके बारे में माना जाता रहा है। आज यह सही मौका है कि इस मिथक के रहस्य पर से पर्दा उठाया जाए, हालांकि इसके लिए इतिहास में काफ़ी गहरे जाकर खोजी नज़र से छानबीन करनी पड़ेगी। मिथक यह है कि A.O. ह्यूम और उनके साथियों ने अंग्रेज सरकार के इशारे पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के निर्देश, मार्गदर्शन और सलाह पर ही ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया था, ताकि उस समय भारतीय जनता में पनपते बढ़ते असंतोष को हिंसा के ज्वालामुखी के रूप में बहलाने और फूटने से रोका जा सके और असंतोष की वाष्प को बिना किसी खतरे के बाहर निकलने के लिए सुरक्षित, सौम्य, शांतिपूर्ण और संवैधानिक निकास या सुरक्षा वाल्व उपलब्ध कराया जा सके। इस तरह भारतीय जनता में खुदबुदाती एक क्रांतिकारी क्षमता का गला घोट दिया गया। यानी इस मिथक का सार संक्षेप यह है कि उस समय एक हिंसक क्रांति दस्तक दे रही थी जो कांग्रेस की स्थापना के कारण टल गई। भारतीय इतिहास के ज़्यादातर लेखकों ने यह बात स्वीकार की है। इसी इस निष्कर्ष के कारण उदारवादी लेखक कांग्रेस की स्थापना को सही कदम बताते हैं, तो प्रगतिशील इसका इस्तेमाल यह साबित करने के लिए करते हैं कि कांग्रेस अगर साम्राज्यवाद के प्रति निष्ठावान नहीं रही तो भी कम से कम वह समझौतावादी तो रही है। जबकि घोर दक्षिण पंथियों द्वारा इस मिथक का इस्तेमाल यह सिद्ध करने के लिए किया जाता रहा है कि कांग्रेस शुरू से ही गैर राष्ट्रवादी रही है। ये सभी लोग एक बात पर सहमत हैं, वह यह है कि कांग्रेस का जन्म जिस तरीके से हुआ उस तरीके ने इसके बुनियादी चरित्र और भविष्य में उसके कार्यों पर निर्णायक प्रभाव डाला। यंग इंडिया में 1916 में प्रकाशित अपने लेख में गरमपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा वाल्व की इस परिकल्पना का इस्तेमाल कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष पर प्रहार करने के लिए किया था। सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना पर लंबी चर्चा करते हुए अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई यह नहीं कह सकता था कि कांग्रेस अपने उस आदर्श अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदार नहीं रही है। लेख के उपसंहार में उन्होंने कहा था कि इसलिए यह है कांग्रेस की उत्पत्ति ग्रंथ ही और प्रगतिशील राष्ट्रवादियों की दृष्टि में इसको निर्दोष ठहराने के लिए इतना काफ़ी है। इसके करीब 25-30 वर्ष बाद इस विषय पर रजनी पाम दत्त के प्रामाणिक अध्ययन ने तो सुरक्षा वाल्व के मिथक को ही विचारधारा के कच्चे माल के रूप में स्थापित कर दिया। इस मिथक को बड़े जोरदार ढंग से उठाते हुए उन्होंने लिखा कि सरकार की सीधी पहल और मार्गदर्शन के द्वारा कांग्रेस अस्तित्व में आई। इसके लिए वायसराय के साथ मिलकर एक गुपचुप योजना तैयार की गई थी, ताकि उस समय उठ रही ब्रिटिश विरोधी लहर और जन असंतोष की ताकतों में ब्रिटिश शासन की रक्षा के लिए इसका कांग्रेस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाए। यह एक आसन्न क्रांति को विफल करने की कोशिश या यूँ कहें कि क्रांति के आने की गई पेशबंदी थी। ठीक है कि समय रहते ही कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में तब्दील हो गई, इसके निष्ठावान चरित्र पर राष्ट्रीय चरित्र हावी होने लगा और यह जन आंदोलनों की वाहक बन गई, लेकिन इसके जन्म के समय का कलंक इसकी राजनीति पर एक अस्थायी दाग छोड़ गया। एक संगठन के रूप में इसका यह दोहरा चरित्र कि इसे सरकार ने बनाया और फिर यह साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की अगुवा बनी, इसके समूचे इतिहास में नजर आता है। इसने साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया और उसके साथ सहयोग भी किया। इसने जन आंदोलनों की अगुवाई की और जब जनता ने क्रांति के रास्ते पर बढ़ना शुरू किया तो उसे धोखा देकर साम्राज्यवाद का साथ दिया। श्री दत्त के अनुसार इस तरह कांग्रेस के दो रुख थे। एक पक्ष तो जन आंदोलन के खतरे के खिलाफ साम्राज्यवाद से सहयोग का था और दूसरा पक्ष राष्ट्रीय संघर्ष में जनता की अगुवाई का था। गोखले से लेकर गांधी तक कांग्रेस नेतृत्व का यह दोहरापन दरअसल भारतीय बुर्जुआ वर्ग के दोहरे और ढुलमुल चरित्र को ही प्रतिबिंबित करता है, जो ब्रिटिश बुर्जुआ के खिलाफ संघर्षरत रहते हुए और भारत के लोगों का नेतृत्व करने की इच्छा रखते हुए भी इसके प्रति आशंकित था कि बहुत तेजी से आगे बढ़ने से साम्राज्यवादियों द्वारा भोगी जा रही सुविधाओं के खात्मे के साथ उसको हासिल सुविधाएं भी खत्म हो सकती हैं। इस तरह कांग्रेस वास्तविक क्रांति यानी हिंसक क्रांति के विरोध का हथियार बन गई। लेकिन कांग्रेस की यह भूमिका गांधी के समय से नहीं शुरू हुई, बल्कि यह बात तो साम्राज्यवाद ने इसके जन्म के समय से ही इसकी निर्दिष्ट सरकारी भूमिका के तौर पर इसे घुट्टी में पिलाई थी। इस दोहरी भूमिका के चरम परिणति माउंटबेटन समझौते के रूप में इसके अंतिम आत्मसमर्पण के तौर पर हुई। इसके पहले 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक संघ चालक M.S. गोलवलकर ने भी कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता के कारण उसे गैर राष्ट्रवादी ठहराने के लिए सुरक्षा वाल्व की इस परिकल्पना का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने पैम्फलेट वी हम में कहा था कि हिंदू राष्ट्रीय चेतना को उन लोगों ने तबाह कर दिया जो राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं और जिन्होंने लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और यह विकृत धारणा फैलाई कि हमारे पुराने दुश्मन और हमलावर मुसलमान भी कई मायनों में हिंदुओं के समान हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि हमने अपने दुश्मनों को अपना दोस्त मान लिया और इस तरह हमने सच्ची राष्ट्रीयता की जड़ें खुद अपने हाथों ही खोद डाली। सच तो यह है कि भारत में चल रहा संघर्ष केवल भारतीयों और अंग्रेजों के बीच नहीं है, बल्कि यह एक त्रिकोणीय संघर्ष है। हिंदुओं को एक तरफ तो मुसलमानों से लड़ना पड़ रहा है और दूसरी तरफ अंग्रेजों से। हिंदुओं को विराष्ट्रीकरण के रास्ते पर ले जाने के लिए गोलवलकर के अनुसार ह्यूम, कांटन और वेडर्न द्वारा 1885 में तय की गई नीतियां ही जिम्मेदार थी। इन लोगों ने उस समय उबल रहे राष्ट्रवाद के खिलाफ सुरक्षा वाल्व के तौर पर कांग्रेस की स्थापना की। उस समय जाग रहे एक विशाल देव को सुला देने के लिए यह खिलौना था, राष्ट्रीय चेतना को तबाह कर देने का हथियार था और जहां तक उन लोगों के उद्देश्य की बात है वे इसमें पूरी तरह सफल रहे। उदारवादी C.F. एंड्रूज और गिरिजा मुखर्जी ने भी 1938 में प्रकाशित भारत में कांग्रेस का उदय और विकास में सुरक्षा वाल्व की बात पूरी तरह स्वीकार की है। हाँ, उन्हें इस बात का संतोष जरूर है कि इससे व्यर्थ के खून खराबे को टालने में मदद मिली। 1947 के पहले और बाद में दसियों विद्वानों और सैकड़ों लेखकों ने इन चार विचारधाराओं में से ही किसी न किसी को दोहराया है।